نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Amazed by الأسماء الحسنى، آج ہم اس سیریز میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام الخافض پڑھیں گے. یاد رکھیے کہ تھوڑے تھوڑے مخرج کے فرق سے نام بدل جاتے ہیں، کیونکہ ایک اور نام بھی الحافظ، وہ الگ ہے، الحفیظ بھی الگ ہے. آج ہم حفظ والا، ہا والا، بڑی ہا والا نہیں، بلکہ خافظۃ الرافیہ. ہم سورۃ الواقعہ میں یہ نام سنتے ہیں تو اس کے بارے میں جاننے لگے کہ الخافض. یاد رکھیے یہ ناموں کی اس قسم میں سے ہے کہ جو جوڑے کی صورت میں آتے ہیں، یعنی اس کا مخالف بھی موجود ہے، اور جب تک آپ اس کے اپوزٹ نام کو نہ دیکھ لیں تب تک اس نام کو بھی ہم صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے. تو کہیں نہ کہیں پھر تعریف میں بات الرافے کی بھی ہوگی. تو رافے کا لفظ الرافے ہمارے لیے آسان ہے سمجھنا، رفت، بلندی. تو الخافض اس کا اپوزٹ کون ہے الخافض؟ خا فا دوات. میں جان کے دوات کے ساتھ بول رہی ہوں کیونکہ اگر میں نے حافظ کہا تو بہت سارے لوگ وہ حافظ سمجھ لیں گے، جو کہ ہمارے ہاں حفظ کے ساتھ ہے، تو وہ بالکل مختلف نام ہے. آج ہم کریں گے خافض، خا فا دوات، نیچا دکھانے والا، نیچا کرنے والا، پست کرنے والا. اور اکثر اس کا ذکر الرافے کے ساتھ آتا ہے، الرافے یعنی بہت بلند کرنے والا. تو جب ہم الخافض کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتے ہیں؟ خافا دوات ہے، خفدا، نیچا دکھانے والا، پست کرنے والا اور گرانے والا. تین نام یاد رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ نام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. کیونکہ بعض نام ایسے ہی ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی ایک دم نگیٹو فیلنگز آتی ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ بہت سے نام ایسے کر چکی ہیں، جیسے المتکبر، الجبار، القہار، کہ نام سنتے ہوئے تو فیلنگز کچھ اور آئی تھی لیکن بعد میں کوئی اور ہی معنی تھا. تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ الخافض کون ہے اور اس کو الحافظ کیوں کہتے ہیں. پس کرنے والا کن کو پس کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سرکش اور نافرمانوں کو پست کرتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی، ہر صفت جو ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. دنیا میں جہاں اچھے لوگ ہیں تو وہاں سرکش بھی ہیں، باغی بھی ہیں، حدوں سے نکلنے والے فاجر لوگ بھی ہیں، نفس کے غلام بھی ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیچا نہ کرے تو زہر الفساد فی البر والبحری بما کسبت ایدی الناس والی کیفیت ہو جائے کہ دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کو بگاڑنے والے بن جائیں، اور نتیجہ کیا نکلے کہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہو جائے. ہم اپنی زندگیوں میں اس کو بہت زیادہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو اور ظاہر ہے کہ الرافے کو بھی ساتھ ہی ملائیں گے تو چار تعریفیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نوٹ کیجئے کہ الخافض کون ہے؟ پست کرنے والا. اور الخافض وہ ذات جو انصاف کے ترازو کو بلند کرتا اور پست کرتا. ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے. دنیا میں کہیں کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے، کسی کے اوپر کوئی ظلم و ستم ڈھاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الخافض وہ ہے کہ جب وہ انصاف کا ترازو بلند کرتا ہے اور پھر اس کو پست کرتا ہے، یعنی گویا کہ اس کو بیلنس میں رکھتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو سرکش ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو حدوں سے نکلنے والے فاجر ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، وہ سب نیچے ہو جاتے ہیں. دیکھیے دنیا میں کسی بھی حکومت کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیے گا کہ جتنا زیادہ کوئی حکومت اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کا لا اینڈ آرڈر اسٹرانگ ہوتا ہے، اس ملک میں امن، چین اور سکون ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ الخافض کی صورت میں سامنے نہ آئے تو یہ دنیا تو سرکشوں سے بھر جائے، نافرمانوں سے بھر جائے، حد سے آگے بڑھنے والے فجار سے بڑھ جائے، نفس کے غلاموں سے بڑھ جائے. یہ بالکل ایسے ہے کہ کسی ملک کی پولیس بالکل فیل ہو جائے اور چور، ڈاکو، لٹیرے اور اسی طرح سے ہائی جیکرز اور کئی کئی بچوں کے قاتل پکڑے ہی نہ جائیں. تو جن ملکوں میں ایسی کیفیت ہوتی ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس ملک کی حکومت لوگوں کو انصاف نہیں دلا پا رہی، تو پہلی چیز لفظ الحافظ کو سنتے وقت ذہن میں رکھی، اور وہ کہہ کہ وہ ذات جو انصاف قائم کرتی ہے، اور انصاف قائم کرنے کے لیے جہاں کچھ لوگوں کو اوپر کرنا پڑتا ہے، اسی طرح کچھ کو نیچے کرنا پڑتا ہے، حق داروں کو حق دلوانے کے لیے اونچا کرنا پڑتا ہے، اور جو حق چھین رہے ہوتے ہیں ان کو نیچا کرنا پڑتا ہے، مظلوموں کو اونچا کرنا پڑتا ہے، ظالموں کو نیچا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے اس کا دوسرا لکھیے، کفار کو رسوائی اور حقارت کے ساتھ پس فرماتا ہے، جبکہ مومنین کو اعزاز اور مدد سے نواز کر بلند فرماتا ہے۔ ذرا سے اس کو جذب کیجئے، پھر آپ کو اس کی خوشی ہوگی کہ واقعی اللہ تعالیٰ یہ کام کتنے خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو قبول نہیں کرتے اور اپنی مرضیوں کے ساتھ جینا بھی چاہتے ہیں اور دوسروں کے بھی مالک بنتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیچا کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بھی ملک کے اندر اگر چوروں کو ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے کوششیں کی جائیں تو ظاہری بات ہے کہ لوگ ان کوششوں کو پسند کریں گے، ادروائز تو لوگ پھر دنیا میں جینا بھی محال کر دینا۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کو عدل اور انصاف بھی قائم کرتے ہیں اور کفر کا سر بھی اللہ ہی توڑتے ہیں، رسوائی اور حقارت ملتی ہے، اور اس کے برعکس مومنوں کو آپ دیکھیے کہ عزت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کس طریقے سے دنیا میں بلند کیا، جنگوں میں دیکھ لیجئے، مختلف حالات میں دیکھ لیجئے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اس نام کا ایک تیسرا معنی بڑی خوبصورت ہے کہ وہ کون ہے جو دشمنوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر پست فرماتا ہے، یعنی اللہ اپنے دشمنوں کو، اللہ کے نافرمان، وہ لوگ جو اللہ کی مرضی نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ ان کی مدد چھوڑ دیتا ہے تو وہ پستیوں میں گر جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس کی بیسیوں مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر جنگ میں جو مسلمانوں کو فتح ہوئی تو دوسری طرف دیکھیے کفار کو شکست بھی ہوئی نا۔ یعنی الخافت کون ہے کہ جو غزوہ بدر میں کفار کے 70 سرداروں کو بدر کے کنویں میں پھینکواتا ہے، گئے نا بستیوں میں، اس کے برعکس مومنوں کو اعزاز ملا، یوم الفرقان بن گیا، تبوک کی فتح دیکھ لیجئے، پھر اسی طرح سے غزوہ حنین دیکھ لیں، ہر جنگ ایون صلح حدیبیہ میں بظاہر مسلمان دبتے ہوئے اور پست ہوتے ہوئے دکھے، لیکن ان نہ فتح نہ لکا فتح مبینہ کی باتیں کرنے والی ہستی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح سے جب اللہ اپنے دوستوں کو قربت اور نیک بختی دیتا ہے تو ان کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا ایک چوتھا اینگل کیا ہے کہ بد بختوں کو گمراہ فرما کر پست فرما دیتا ہے اور نیک بختوں کی رہنمائی فرما کر انہیں بلند کر دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا، یعنی دنیا میں جتنی بھی پستیاں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ دیکھیے ہر پہاڑ کی بلندی کے ساتھ اتنی ہی گہری کھائی ہے، الخافض، ان کھائیوں کے اندر چیزیں موجود ہیں، ان کو اندر نیچے سے نیچا کرنے والا ہے۔ سمندروں کی تہوں کو دیکھیے، اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے غاروں اور پہاڑوں کی تہوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلندی ہو کے پستی سب اسی کی ذات سے، وہ جسے چاہے بلند کر دیتا ہے، جسے چاہے پست کر دیتا ہے۔ آپ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دونوں ناموں کا تقابل کرتے ہوئے دیکھیں تو الرافع کون ہے؟ جس نے ہمارے اس جسم میں سر کو بلندی پہ رکھ دیا ہے نا، سب سے اوپر راس، اور سر کو راس کہتے ہوئے اس لیے کہ سردار سب سے اونچی چیز ہے، اور پاؤں کو سب سے نیچے کر دیا۔ تو کیا پتا چلا کہ الخافض کون ہے؟ جو پاؤں کو پست کر دیتا ہے تو وہ سر کا حکم ماننے پر مجبور ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر ادنا ہر اعلیٰ کا حکم ماننے پہ مجبور ہے۔ کبھی آپ بادشاہوں کو دیکھیے، عمرا کو دیکھیے، حکام کو دیکھیے، تو الرافع نے ان کو سر بلندی عطا کی، بس وہ اپنے ماتحتوں پر حکومت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے ماتحتوں کو بنسبت ان کے احکامات کے پستی عطا کر دی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ سارے معاملات آپ کو مجھے چاروں طرف پھیلے ہوئے دکھتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کے اس نظام کو چلاتے ہیں، کچھ کو اوپر کر دیا، سخریہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے کہ کچھ کو ہم نے اتنا جھکا دیا، ورنہ تو دنیا کا کام ہی نہ چلتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پست کرتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہے اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکلنے والوں کو الخافض پست کرتا ہے۔ جس دن مجھے آپ کو اس کا یقین آ گیا اس دن کبھی یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم اس کی نافرمانی میں جئیں، کیونکہ وہ تو سورۃ توبہ 67 میں فرماتا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، बेशक मुनाफिक वही फासिक हैं। और सूरह मायदा आयत 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्मों पे नहीं काम करते, यानी जो अल्लाह ने अहकामात नाजिल किए अगर वो नहीं करते तो अल्लाह सुबहाना ताला फिर उनको क्या करते हैं, वही अल्लाह की नज़रों से गिर जाते हैं। कभी वो काफिरून हैं, कभी वो फासिकून हैं, कहीं उनको कुछ और कुछ। तो याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला के हाथ में सारी पस्तियाँ। हम हर लोगों से डरते हैं, फ़लाँ मुझे नीचे कर दे, हाय मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इज़्ज़त का मसला है, मेरी नाक कट जाएगी, कोई नाक नुक नहीं कटती, किसी की नहीं कटती देखी, नहीं ये तो पेशानी नीचे लग जाएगी, हाय मैं तो दो कौड़ी का हो जाऊँगा। नहीं, अल हाफिज वो हस्ती जिसने ज़मीन को पस्ती अता की और फिर पस्ती दर पस्ती अता करी, जैसे फ़िज़ा में रिफ़तें बुलंद की। आप देखिए इतनी पस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने इतने मज़बूत पहाड़ गाड़ दिए, फिर उनके अंदर गार और पस्तियाँ पैदा कर दी, इसी ज़मीन की तहों में कई किस्म की मखलूक़ात पैदा कर दी, कीमती हीरे जवाहरात मादनियात बना दिए, वो ज़मीन को पस्त करता गया और इसकी पस्तियों में कई किस्म की चीज़ें और हैवानात को पैदा करता गया। अल्लाह ने समंदरों की गहराइयों को मखलूक़ात से पुर किया हुआ। कभी आप ओशन के अंदर झांक के देखें, सी वर्ड देखिए, अक्ल दंग रह जाती है, उसकी तहों के अंदर इतना हुसन, इतनी खूबसूरत चीज़ें भरने वाला। तो याद रखिए, अल खाफिज़ु हुवल्लज़ी यक़बिदुल क़िस्त व यरफ़ुहु औ यक़फिदुल कुफ़ार बिल ख़िज़्ज़ि वस सिग़ार व यरफ़ुल मोमिनीन बिन नसर वल एज़ाज़ औ यक़फिज़ु अदाहु बिल इबादी व यरफ़ुल औलियाहु बित तक़रीबी वल इसआत। और चौथी जो तारीफ आपको अभी तक बताइए, व हफ़ज़ अख़्ल शिक़ाय बित तबी व दिलाली व रफ़ज़ बिस सआदत बित तौफ़ीक़ वल इरशाद। ये चार डिक्शनरी में तारीफें आपको अल्लाह ताला के इस नाम अल खाफिज से मिलेंगी। और हकीकत यह है कि बर्फ़ की तहों के अंदर क्या क्या छुपा देता है। अटलांटिक ओशन को देखिए, ऐसे लगेगा आपको कि क्या से क्या हो गया और अल्लाह ताला ने सब कुछ रखा। तो खुलासा अभी तक की बात का क्या है कि उसने हर चीज़ में पस्ती और बुलंदी रखी। और याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला की हस्ती है जो इंसान को दुनिया में देती है और आप उसको लेते हैं। एक वीडियो के जरिए देखते हैं ज़रा अल खाफिज की कुछ चीज़ों को, ताकि पहले हमारा माइंड अल्लाह ताला के इस नाम को समझने पे जम जाए और फिर हम उसको महसूस करके देखें। वो खुद अपना कुरान में फरमाता है कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिगैर अमदिन तरौनहा, उसने बगैर सतूनों के आसमानों को बुलंद कर दिया। तो आप देखिए कि मैं और आप जब तक अल्लाह सुबहान तला के बारे में नहीं जानेंगे, उसका मुकाम नहीं पहचानेंगे, हम उसको कैसे जान सकते हैं, हमारा उसके साथ मामला कैसे होगा। और आप देख सकते हैं इन चीज़ों को कि अल्लाह की हस्ती जब आपकी मेरी ज़िंदगी में अपनी खूबसूरत चीज़ों को पेश करती है। आप देखिए कि आपके सामने जो तस्वीर है, कैसे पहाड़ों की बुलंदियाँ भी हैं, पानी पस्ती की तरफ गिर रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं कि हमेशा पानी दहलवान की तरफ जाता है। पानी के बहते हुए झरनों को देखिए, कैसे अल्लाह सुबहाना ताला ने ये बुलंदियाँ और पस्तियाँ रखी हैं। जितना ज़्यादा आप और मैं इन चीज़ों के ऊपर अपने आप को लेकर रखेंगे, उतना ज़्यादा हमें समझना भी आसान होगा। हम जितना ज़्यादा अपने मालिक के अरूज और ज़वाल के किस्से को, उसकी हिकमतों को समझते जाएंगे, हमारी ज़िंदगी खूबसूरतियों में ढलेगी। अब देखिए, पहाड़ ऊपर कर दिए, ज़मीन नीचे, कभी आपने ज़मीन और आसमान का झगड़ा सुना? क्या मुसीबत है, मुझे पाँव में कर दिया, मुझे ऐसे कर दिया, मैं तो ऐसी हूँ और मेरे तो नसीब में शायद यही है। आप देख रहे हैं कि ये कायनात इतनी खामोशी से अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल करती जा रही है कि आपके मेरे लिए कोई एतराज़ की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। आपके मेरे मामलात में अल्लाह सुबहान तआला ने इतनी खूबसूरती डाल दी। हम इस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेकर, अल्लाह ताला के हुक्मों को लेकर चलते हैं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और फिर आप देखिए कि आप जितना अल्लाह सुबहान तआला के अरूज ज़वाल के इन मामलात को समझेंगे ना, आपको अपनी ज़िंदगी के कई मामले समझ आएंगे। कई दफ़ा आप दबे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, ये देखिए ये पहाड़ खड़े हैं तो दरिया बहते जा रहे, सब कबूल करके बैठे हुए हैं। कोई हो नहीं सकता ऐसा कि जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ताला के इन मामलात को देखे ना। तो जब आप कायनात को देखें, आपके अपने घर में दिन रात में इतनी मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जिसमें आप अपने मालिक की इन सारी चीज़ों को पहचाने, तो आपको लगेगा फिर झगड़े ही ख़त्म, फिर गिले ही ख़त्म, फिर आप ये नहीं कहते हाय मेरे साथ ऐसा, फलां के साथ कैसा। हम पहाड़ों में होके आ जाते, हम रेगिस्तानों में घूम के आ जाते, हम सी वर्ल्ड पे चले जाते, समंदरों में करीब से आते, बल्कि और ही मस्तियाँ और शौकियाँ करके आ जाते। तो याद रखिए, अल हाफिज़ को जानने के लिए आपको अपने अंदर भी आजिज़ी लानी पड़ेगी। आप खुद झुकिए। अल्लाह के नबी की वो जो बातें हैं कि जिसने अपने आप को अल्लाह के लिए दबा लिया, जिसने हक पे होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, अल्लाह जन्नत देगा। दुनिया में अल्लाह सुबहाना ताला की इस चीज़ को कबूल करते हुए आपको मुझे बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। याद रखिए कि जितना हमारे अंदर इल्म आए, अगर उतना अमल ना आए, अगर उतनी आजजी ना आए, बल्कि मैं एक जुमला अक्सर बोल देती होती हूँ कि अगर इल्म के साथ हेल्म ना हो ना, तो निरा तकबर है। और एक ऐसे शख्स की कहानी हमें अल्लाह सुबहान तआला ने सूरत अल अराफ की आयत 175 और उसकी अगली चंद आयतों में सुनाई है। आइए ज़रा उसको भी देख लेते हैं और फिर अपने लिए तो एक ही नीयत रखें। दुआओं में ये दुआ शामिल कीजिए और नीयत ये रखिए कि अल्लाह जितनी आपको इज्जत देता जाए आप उतने झुकते जाएं, जितना इल्म देता जाए आप उतने सॉफ्ट होते जाएं। आप जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे ना, आपको खुद महसूस होगा। तो सूरत अल अराफ की आयत 175 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और इस आयत को पढ़ते हमेशा हाथ ठंडे होते हैं, क्योंकि अपना भी तो पढ़ने पढ़ाने से ही ताल्लुक़ है ना। तो मैं सोचती हूँ कि लोग तो पता नहीं क्या कहते होंगे इल्म वालों को, अल्लाह ना करे अगर अंदर कहीं अकड़ आ गई, अगर अंदर अपने आप को बड़ा समझने का ख्याल आ गया, तो पता नहीं कल वहां जाकर लेने के देने ना पड़ जाए। कई दफा नेगेटिव मार्किंग नहीं शुरू हो जाती, आप कहते हैं मैंने फलां से इतना लेना है, और जब वो आपके सामने बैठता है तो पता चलता है कि दे के जान छूट जाए तो बड़ी बात है। तो हमें अक्सर अपनी चीजें नहीं दिखती। तो शख्स के बारे में है, अल्लाह ने इसका नाम दिया है, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ीना आयातिना फनसलखा मिनहा फतबाहु शैतान फकान मिनल गावीन। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने उस शख्स का हाल बयान कीजिए जिसको हमने अपनी आयतों का इल्म अता किया था, मगर वो इनकी पाबंदी से निकल भागा। आखिरकार शैतान इसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। ये वो शख्स था कि जिसको अल्लाह ने इल्म दिया था। इसके ऊपर बड़ी लंबी कहानी है जिसका खुलासा क्या है, क्योंकि बनी इसराइल का वाक़ है तो बनी इसराइल की रिवायात ही इसमें ज़्यादा आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको कुरान पाक में पेश करके यकीनन इस वाक़े के ऊपर आपको मुझे गौर व फिक्र करने का मौका दिया है। तो आप कह सकते हैं कि इंसान की पस्ती का सबब अल हाफिज़ की नाशुक्री है। तो बनी इसराइल का ये एक आलिम था, उसकी गुमराही का वाक़ा इब्ने मरदविया रिवायत है। अगर आप कुरान में से उस आयत के साथ अगर आप तफसीरों में भी देखेंगे तो मिल जाएगी। तो बुनियादी तौर पे ये एक शख्स था, अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है। नाम इसका रिवायत में आता है बलम बिन बाउर, यानी बालम भी कहते हैं, बलम बिन बाउर नाम है। शाम में बैतुल मक़दस के करीब कनान में रहने वाला था और बनी इसराइल से इसका ताल्लुक़ था। अल्लाह की किताबों का इल्म इसको हासिल था, यानी अपने दौर में, या कह लीजिए कि इसके दौर में जो भी किताब थी वो तौरात थी या इंजील थी, या जिस नबी का भी दौर इसने पाया तो ये उसको पढ़ता था, जानता था। अब वो इल्म इसके पास हो जाना ये एक चीज़ थी, लेकिन इल्म के ऊपर अमल करना ये बहुत ही अजीबोगरीब सी चीज़ होती है। तो सारी बातों को अगर आप यानी इन शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसी कहानियाँ पढ़ते पढ़ाते बताते हुए ज़रा खौफ भी आता है कि कभी भी बात इधर से उधर हो गई तो क्या बनेगा। हमारा तो इस वक्त मकसद क्या है कि हम इस शख्स के हाल से इबरत लें, कि जिसको अल्लाह सुबहाना ताला ने हमारे लिए सिंबल बना दिया, किताबों का इल्म था, और कुरान कहता है अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, हमने इसको अपनी आयतें दी थी, इसी तरफ इशारा कर दिया गया। तफसीर माजदी में आता है कि यानी हमने अहकाम इल्म की नेमत उसको अता की थी, लेकिन फनसलहा मिनहा, फिर इसने नेमतों की कदर ना की बल्कि सरकशी पे आमादा हो गया। फनसलहा का लफ्ज़ है ना इनसलख, कहते हैं कि सांप का अपनी कुचली में से बाहर आ जाना, यानी ऊपर एक वनीर था, एक ऊपर की कोटिंग थी। याद रखिए जब इल्म दिल में नहीं आता ना तो ऊपर का कोटिंग है, जैसे कभी चेहरे पे बहुत मोटी लेयर लगा देना कोई फाउंडेशन की, तो ज़रा से हंसने बोलने से लाइनें पड़ती हैं। और एक वो होती है जो स्किन के अंदर नेचुरल ग्लो होती है, वो खूबसूरती का होता है। कुछ लोगों का इल्म ऊपरा ऊपरा इल्म होता है, बड़ी उनको पंप एंड शो मिलती है, फूले अकड़े, लेकिन अंदर खाते उनके पास क्या होता है, सिर्फ तकब्बुर होता है। कहते हैं कि जब फिरौन डूबा और फतेह मिस्र हुआ, तो हज़रत मूसा और बनी इसराइल को जब कौम जब्बारीन से जिहाद का हुक्म मिला, जो कि इमालका नाम की कौम थी, तो हज़रत मूसा ने तमाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर अपने आप को वहां पेश करना चाहा, और वो सारा मामला जो हुआ तो बलम बिन बाउर के पास लोग आए और कहा कि देखो मूसा तो बड़े सख्त हैं, इनके सब बड़े लश्कर हैं, आप ऐसा करें कि हमारे साथ चलें। यानी बलम बिन बाउर का नाम एक किस्म का मुखालिफ था। मैं इसकी डिटेल्स में जाए बगैर आपको इसके अगले हिस्से पे ले जाती हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला उशेना लरफा ना हु बिहा वला किन्ना हु अखलद इलल अर्द वत्तबा हवा हु फमसलहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकु यलहस ज़ालिक मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। अगर हम चाहते तो इसे इन आयतों के ज़रिए से बुलंदी अता फरमाते, मगर वो तो ज़मीनी की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिश नफ्स ही के पीछे पड़ा रहा। लिहाजा इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि तुम इस पर हमला करो तब भी ज़ुबान लटकाए रहे और इसे छोड़ दो तब भी ज़ुबान लटकाए रहे। यही मिसाल है इन लोगों की जो हमारी आयात को झुठलाते हैं। तुम यही कायात इनको सुनाते रहो, शायद कि ये कुछ गौर व फिक्र करें। अल्लाह अकबर, इतना गहरा इसका मज़मून है ना कि वाकई हाथ ठंडे होते हैं कि बाज़ दफ़ा थोड़े इल्म के साथ हम ज़्यादा शोहरत और ज़्यादा ही बड़े बड़े दावे करने लग जाते हैं, छिछोरपन आ जाता है और लोगों को हम वो बन के दिखाना चाहते हैं जो हम होते नहीं। बड़े बड़े साहब के लाख भी हमारे नामों के साथ लगते हैं। याद रखिए, अवाम तो कल अनाम है, उनको क्या पता। आप चार आयतें पढ़ लें, चार अरबी के जुमले बोल दें, लोग आपको आलिम समझने लग जाते हैं। आप इधर उधर से सुन सुना के कोई चीज़ जाके डिलीवर कर रहे हैं, लोग आपको बड़े से बड़ा उस्ताद कहने पे मायल होते हैं। उनके पास क्या क्राइटेरियन है? लेकिन जब दिल के अंदर खरापन ना हो तो अल्लाह कहीं ना किसी जगह रोक लेता है। तो ये शख्स कुछ ऐसा ही था, जल्दी की इसने। अगर थोड़ा रहता, और हदीस में आता है कि इंसान को इल्म इज्जत देता है, बल्कि सूरह मुजादिला की एक आयत भी है कि बयरफअल्लाहुल्लज़ीना ऊतुल दराजात, के इल्म वालों के दर्जे हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो से भी एक रिवायत हमें बहुत प्यारी मिलती है, इसको दिल से लिख लीजिए। और रिवायत सही मुस्लिम में है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़ो बिहाज़ल किताब अक़वामन, बेशक अल्लाह इस किताब के ज़रिए कौमों को बुलंदियाँ देता है, व यदाउ बिही आखरीन, और इसी के ज़रिए से दूसरों को नीचे भी कर देता है। तो कर अल्लाह ने आपको थोड़ा इल्म दिया है या ज़्यादा दिया है, आजिज़ बन के रहिए, अपने आप में रखें। और एक जगह मैंने तारीफ़ में बोला था कि आलिम वो है जिसको अपने इल्म की कमी का एहसास हो, आलिम वो है जिसको अपनी औकात पता होती है। वो बात क्यों छेड़ते हैं आप जो संभाल नहीं सकते? आपने वो मौजू क्यों छेड़ा कि जिसके बाद आपको लेने के देने पड़ गए और महफिल में आवाज़ें बुलंद हो गई? तो याद रखिए कि आलिम इल्म देने वाला नहीं होता, इल्म को कंटेन करने वाला होता है। कब कहाँ देना है? डॉक्टर को 10 दवाइयों के नाम आते हैं, लेकिन वो सारी तो नहीं दे देता। वो कहता है ये नहीं खानी, इतनी नहीं खानी, पूरी गोली नहीं खानी, आधी खानी है। तो इसी तरह से बास लोग कैसे फिर अपने इल्म के बावजूद नीचे होते हैं? कोई इस्तखारों में पड़ गया, कोई वजीफे बताने में, कोई ख्वाब देखे दिखाने, और लोग कहते हैं जी ये बड़े वजीफे बताते हैं और ऐसे हैं वो से। और फिर याद रखिए, जहाँ नजराने पेश हो जाए, हदिये तोहफे पेश हो जाए, तो उस वक़्त तो फिर ऐसी बातें जो हैं वो बहुत बड़ा फितना है। इसको आफातुल इल्म भी कहते हैं। पूरे पूरे बुक्स क्या चैप्टर्स, पूरे पूरे अबवाब बंधे हुए हैं आफातुल इल्म, इल्म की आफतों में से एक आफत थी जिसका ये शख्स शिकार हुआ। अल्लाह ने फरमा दिया कि देखो नाम तो नहीं लिया, ये अल्लाह की बड़ी प्यारी सुन्नत है, नामों से बदनाम नहीं किया, बस कह दिया अल्लाह जी। वो एक शख्स था। तो हमेशा इल्म लेते वक्त आजिज़ बनिए, और लीजिए और लीजिए। आप इल्म देने के दौरान आपको तालिब इल्म कहिए, जो आखिरी ज़िंदगी तक तालिब इल्म रहता है अल्लाह उसको इज्जत देता है। और जो अपने नाम के साथ कोई बहुत ही बड़े बड़े लाख के सबके करे, तो वो चीज़ें जो है बस वह बंदे को सही नहीं लगती। तो अल्लाह ताला ने उसकी बात करके फरमा दिया कि देख लो तुम कौन हो। और इसी तरह से आप देखिए कि अल हाफिज़ कौन है, कि उसके ना नजर आने वाले लश्कर इंसान को पस्त कर देने के लिए काफ़ी हैं। बस दफ़ा दुनिया में कई जगह पान से पलट दिए जाते हैं, पता नहीं चलता कौन कहाँ है, किसने किया, लेकिन जीती हुई जंगें हार जाते हैं लोग। अल्लाह ने नमरूद को एक मच्छर या मच्छरों की एक फौज से तबाह कर दिया। अब्रहा के लश्करों को अलखाफिस ने छोटे छोटे कंकरों वाले अबाबीलों के जरिए से नीचा कर दिया। उसके लिए क्या मुश्किल है? तो आप याद रखिए कि अल्लाह ताला के ना नजर आने वाले लश्करों से हमेशा डरिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी फौजें हैं, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास एटम बॉम्ब है, हमारे पास ये है न्यूक्लियर एनर्जी है, ये है। याद रखिए, सबसे बड़ी चीज़ भी आपके पास हो, अल खाफिद, आपकी उस सारी ताकत को कमज़ोर कर सकता है। कितने जोश और वलवले के साथ गज़वे खंदक के मौके पे मुशरिकीन ने मक्का, यहूद मदीना, बदवी अराब और इस तरह कबायली लोग आए, क्या किया अल खाफिज ने? सब प्लान ख़त्म। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी जंगों में बचने का कोई तरीका होता है कि हम अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए खंदक खोद दें। और बेकार हो गई सारी कोशिश, मक्का से मदीना वापस तो नहीं जाकर कोई तैयारियां करके आएंगे, कोई सीढ़ियां लेकर आते या कोई रस्सियां लेकर आएंगे कि चलो हम खंदक को पार कर जाएं। तो याद रखिए, अर राफे अल खाफित, वो हस्ती कि जब किसी से अपनी नजर करम हटा ले, वो बंदा हर किस्म की हिफाजत से महरूम हो जाता है। और फिर वो वहदा उला शरीक को छोड़कर शिर्क और कुफर और गुमराही की पस्तियों में बहकता है। इसलिए हमेशा आफियत मांगा करे, डरते रहें कि अल्लाह अगर आज कोई इज्जत दी है तो कहीं ये इज्जत मुझसे छिन ना जाए। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज जो इज्जत उन्हें दी है उसको मैं सहार ना सकूं। तो जितना ज्यादा आपको अल्लाह बुलंद दर्जे दे, आप उतने नीचे बन के रहें। और इसी तरह से आप देखिए कि अल खाफित ने एक बीवी होने के नाते एक औरत को मर्द के लिए झुका दिया। खाफिदातुल गैब, फिर इसी तरह रिजाल कवामून अला निसा कहकर अगर उसने मर्दों को बुलंदी भी दी तो औरतों के लिए कहा क्या? सालेहा बनो, कानिता बनो, खाफिदात बनो, अपने शौहर की हिफाजत करो, उसकी चीज़ों की, उसकी औलाद की अच्छी तरबियत करो। तो ये अल्लाह सुबहाना तआला की शान है ना, वो किस तरीके से इस तरह के मामलात करता है।